ओम शांति। बाबा हम सभी को बहुत अच्छा लक्ष्य देकर गए हैं, विघ्न मुक्त जीवन, निर्विघ्न जीवन। तो मुझे आज कुछ लोगों के अनुभव जो अभी दो चार दिन में ही फोन के द्वारा प्राप्त हुए, वो याद आ रहे थे कैसे विघ्न आते हैं मनुष्यों के जीवन में। साथ साथ इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हम जैसे अपने को निर्विघ्न बनाना चाहते हैं, वैसे ही दूसरों को भी निर्विघ्न रखना चाहें। जो हमारे साथी हैं, गृहस्थ वाले हैं, परिवार में एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो हम दूसरों की सुख सुविधाओं को भी ध्यान रखें। जैसे एक माता योग की बहुत शौकीन, सवेरे 2 बजे उठ जाती है और लक्ष्य रखती है कि सबको उठा दूं, ये बहुत अच्छा काम है, ये क्यों सोए हुए हैं। परिवार वाले उससे परेशान रहते हैं, बहनों के पास भी जाते हैं, तुम क्या सिखाते हो। तो एक ओर हमारे द्वारा परिवारों की, संबंधियों की, समाज की सेवा होनी चाहिए, परंतु देखने में आता है कि किसी किसी के संस्कार श्रेष्ठ न होने के कारण वैसी सेवा नहीं होती। तो हमें अपने जीवन की यात्रा में दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। रखना चाहिए या नहीं? दूसरों की सुविधाओं का ध्यान, दूसरों को हमसे सुख मिले, उनकी मेंटेलिटी क्या है, उनकी मनोस्थिति क्या है, उनकी बुद्धि कितनी है, इसका ध्यान रखते हुए हम दूसरों के साथ व्यवहार में आए। तो हमें निर्विघ्न जीवन बनाना है। अगर हम विघ्नों के बीज पर ध्यान दें, विघ्न कहां से शुरू हो रहे हैं, सभी इस बात पे जरा गहराई से चिंतन करना, अपने को भी देखते हुए और अपने चारों ओर देखते हुए कि विघ्न मनुष्य के जीवन में कहां से शुरू हो रहे हैं, आखिर इसका बीज कहां है। एक बहुत बड़ा बीज दिखाई देता है, मनुष्य के अपने स्वभाव संस्कार। हम सॉफ्ट नहीं हैं, हम स्वीट नहीं हैं, हम सरल चित्त नहीं हैं, हम सहयोग की भावना से नहीं जीते, तो दूसरों के जीवन में भी विघ्न डालते हैं और अपने जीवन में भी विघ्नों का आह्वान करते हैं। मैं आज 2-3 अच्छे प्रैक्टिकल उदाहरण भी आपको दूंगा जो सत्य हैं, कहानी नहीं है, लेकिन हम ध्यान दें हमारी स्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां हैं ही नहीं। ये बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य हमें अपने सामने रख लेना चाहिए, लिखकर भी रख लेना चाहिए। स्वमान से स्थिति श्रेष्ठ होगी और जहां स्थिति श्रेष्ठ होगी वहां परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। मेरे पास अभी का एक आत्मा का बहुत ही अच्छा अनुभव है। 8-9 दिन हुए होंगे वो मेरे पास आई, कहा मेरे जीवन में ये बहुत समस्याएं हैं। उसका जीवन समस्याओं से भरा हुआ दिखाई दे रहा था, चेहरे पर भी उदासीनता आई हुई थी, उसको अपने भविष्य की चिंता हो गई थी, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। मुझे बाहर जाना था, मैं बेंगलोर गया था। मैंने उसे कहा मैं 5-6 दिन के बाद आता हूँ, तब तक आप एक छोटा सा प्लानिंग करो अपने पुरुषार्थ को, योग स्वमान जो हमारे अभ्यास हैं, पांच स्वरूपों का अभ्यास सारे दिन में चार घंटे तक करो। मैंने उसको थोड़ी सी विधि सजेस्ट कर दी सिंपल के चार बार बाबा के रूम में बैठो, सेवा में आई हैं, ज्यादा सेवा नहीं थी, पंद्रह पंद्रह मिनट चार बार बैठो, एक घंटा सवेरे भी करो एक घंटा शाम को, बाकी कर्म योग करना, चार घंटा योग आपका हो जाएगा। पांच सात दिन करना, मैं आऊंगा फिर हम आपसे बात करेंगे। मैं था वहीं, एक दिन उसने किया और दूसरे दिन सवेरे मेरे पास आप ही आ गई। मैंने सोचा कुछ और समस्या ले आई होगी बहन जी, क्योंकि पुरुषार्थ में भी समस्याएं आ जाती हैं। कहा मैंने कल से बहुत अच्छा योग किया और मुझे लगता है जीवन में कोई समस्या है ही नहीं। ये केवल एक दिन भी नहीं हुआ था, थोड़े से समय के श्रेष्ठ पुरुषार्थ का परिणाम। ये मैंने एक का अनुभव सुनाया पर ये अनुभव हजारों के हैं। स्थिति श्रेष्ठ होते ही वो बातें जो हमें समस्याएं लग रही हैं समस्या रह नहीं जाती, क्योंकि समस्याएं हमारे कमजोर मन के कारण छोटी बात भी बड़ी दिखाई देती है या नहीं है सही? बात बहुत छोटी होगी हमें बहुत बड़ी दिखाई देगी, लेकिन अगर हम बहुत ऊंचाई पर हैं, मान लो हमें ये स्वमान बहुत अच्छा हो गया है, मैं पूर्वज हूँ, पूर्वज माना बड़े, छोटे नहीं, बच्चे नहीं, मान आत्मा से भी बड़ा स्वमान है, मैं पूर्वज हूँ, ये नशा हो जाए तो सभी बातें, जीवन में आने वाली छोटी मोटी बातें खेल लगने लगेंगी। पहले हम समस्याओं के बारे में अपने दृष्टिकोण को ठीक करें। मुझे किसी ने एक छोटी सी किताब दी, कहा देखो स्वामी विवेकानंद का जीवन चरित्र लिखा हुआ, छोटी सी थी, छोटी सी उसमें घटना थी। स्वामी विवेकानंद का कितना नाम हो गया, उसे लोगों ने युग पुरुष मान लिया, उसके बारे में कितनी कितनी बड़ी बातें हुई, वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हुआ, ब्रह्मचर्य का बल उसके पास सबसे ज्यादा था, उसने क्रिश्चियन मिशनरी के बढ़ते हुए प्रभाव को रोक दिया, अनेक बातें उसके लिए भारत में हुई। लेकिन उस किताब में क्या था, सोचने की बात होती है, कोई भी मनुष्य सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचने से पहले कितनी बाधाएं पार करता है। मैं पढ़ के हैरान रह गया, संन्यास ले लिया तो भिक्षा पर जीवन होता है संन्यासियों का। युवक थे 25 साल की आयु, जिस घर में भिक्षा मांगने जाओ, भारत तब बहुत गरीब था, अब से 125 साल पहले, तो लोग कहेंगे जवान काम नहीं करता, भीख मांग के खाता है, इंसल्ट भी करते थे। तो लिखा था कि सूखी रोटी मिल जाती थी, इतनी सूखी होती थी, जो बात मैं आपको सुनाने के लिए ये बात प्रारंभ की, रोटी इतनी सूखी होती थी कि अगर खाई जाए तो अंदर से सब छिल जाता था, फिर उसको पानी में डुबा के रखते थे, फिर वो नरम होती थी तो सूखी ऐसे ही खा लेते थे। देखो जिस व्यक्ति के पीछे आज एक बड़ा समुदाय चल रहा है, उन्होंने अनेक बाधाओं को पार करके वो प्रसिद्धि पाई, अमेरिका में पहुंचे, बहुत नाम भी हुआ, लेकिन भारत के बहुत सारे लोग ग्लानी भी करने लगे, उनके बारे में बुरी बुरी बातें भी अखबारों में डलवाने लगे, लेकिन उसने सब कुछ पार करके अपनी श्रेष्ठता को, अपनी सत्यता को प्रैक्टिकल जीवन से सिद्ध कर दिया। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सत्यता के सूर्य को असत्य के काले बादल ढक नहीं सकते। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि सत्यता के मार्ग में विघ्न तो हैं, बल्कि हम ये कहें कि कलयुग के अंधकार में सत्यता का मार्ग कांटों से भरा हुआ है। सत्य को साथ देने वाले बहुत कम मिलेंगे, शायद कोई न मिले, सत्य को शायद अकेला चलना पड़े, लेकिन ये बात भूलनी नहीं है, जिधर सत्य है उधर परम सत्य बाप है, भगवान है। ये नशा अगर हो जाए तो बहुत सारी बाधाएं हंसते हंसते पार कर ली जाती हैं। तो पहली बात जिस पर हमें ध्यान देना है कि बाधाओं को हम बाधाएं नहीं समझेंगे, ज्ञान में चलने वालों को अनेक तरह के विघ्नों का सामना करना पड़ता है। और पहला विघ्न जिससे आप कई गुजर कर आए होंगे और कई गुजर रहे होंगे, एक ज्ञान में चलता है पवित्रता के कारण, दूसरा विरोध करता है। कुमार ज्ञान में चलते हैं, कई बैठे हैं, पवित्रता के कारण कईयों को घर से भी निकाल दिया जाता है। कन्या ज्ञान में चलती हैं, उनको घर में माँ बाप रखना भी नहीं चाहते, आजकल वातावरण बहुत बिगड़ा हुआ है, कई कठिनाइयां उन्हें आती हैं, चाहते हुए भी वो नहीं कर पाता मनुष्य जो वो चाहता है। लेकिन अगर हम बाबा को साथ रखते हुए, ईश्वरीय नशे में रहते हुए कदम आगे बढ़ाते हैं तो विघ्न समस्याएं पीछे रह जाती हैं। सत्य तो ये है कि जिसको भगवान साथ दे रहा हो उसे रोकने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। अपने चित्त को शांत करना हमें सीखना है। कई लोग छोटी बातों के कारण अपने को विघ्नों का स्वरूप बना लेते हैं। मान लो मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं जो संगठनों में होता है, किसी एक व्यक्ति में, किसी एक भाई या बहन में भाषण करने की बहुत अच्छी कला है, स्कूलों में प्रोग्राम चल रहे हैं, उसको भाषण करना बहुत अच्छा आता है, लेकिन चार बार उसको भाषण का चांस दिए जाने के बाद पांचवी बार उसको नहीं दिया जाता, कोई भी कारण हो, कारणों पे हम नहीं जाएंगे, तो उसको लगता है मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया गया। जिसने उसको चांस नहीं दिया उसको वो अपना परम मित्र या शत्रु, सोच लो आप क्या मानता है, सोचता है यही आत्मा मेरे मार्ग में सबसे ज्यादा बाधक है, ये न हो तो अब तक मैं कितना आगे बढ़ गई होती। एक बात उदाहरण आप ले लें, इससे उसकी स्थिति बिगड़ जाती है, मुरली में रस नहीं रहता, ज्ञान योग पीछे छूट जाता है। एक उदाहरण आप लें, लेकिन वही आत्मा अगर अपनी स्थिति को न बिगाड़े, भाषण करने का चांस नहीं मिला, दूसरे अवसर बहुत हैं सेवा करने के, अगर वो फ्लेक्सिबल हो जाए, सरल चित्त हो जाए, सार रूप में स्थिति न बिगाड़े, सहयोग की भावना को समाप्त न करें, बाबा से दूर न होने लगे, कई नाराज होके बाबा को ही कहने लगते हैं तुम भी हमें मदद नहीं करते, हम तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे थे, उसे ठीक करो ना, उसकी बुद्धि को ठीक करो। और बाबा मुस्कुराता है। मैंने कल एक क्लास में उदाहरण दिया बहुत अच्छा, वो हम सब के लिए है, बात तो आपने कई बार सुनी होगी पर इसको अपने चिंतन में लाना है। हमारे मार्ग में, जिस द्वार से हम जा रहे हैं, जिस मार्ग से हम जा रहे हैं, उसको कोई बंद कर दे, बंद होते हैं, बिना कारण ये समस्या पैदा नहीं होती। कोई ईर्षावश कोई और किसी कारण से किसी के द्वार बंद करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बाबा हमारे एक की बजाय चार द्वार खोल कर रखता है। और अनुभव बहुत लोगों के यही हैं, आपके भी होंगे, कि हो सकता है उस द्वार के बाहर गड्ढाई हो और बाबा ने सोच समझकर उस द्वार को बंद कराया हो कि इस द्वार से अगर ये जाएंगे तो पतन हो जाएगा, इसलिए द्वार बंद कर दो। तो हमें द्वार बंद होने पर अपने कदमों को बंद नहीं कर देना चाहिए। रास्ते बहुत हैं, बाबा द्वार खोले हुए है, दूसरे द्वार से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये सब याद रखेंगे, इसलिए मूल मंत्र यही है, जो अपनी स्थिति न बिगाड़े उसका जीवन समस्याओं से मुक्त रहेगा, और जिसने अपनी स्थिति बिगाड़ ली उसने समस्याओं का आह्वान कर लिया। अब मेरे सामने जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मुझे याद आ रहे हैं वो मैं आपको सुना देता हूँ, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, पर इनमें बहुत अच्छी शिक्षा है हम सब के लिए। सत्य घटना है, नजदीक की है, किसी ने एक भाई ने ब्रह्मा भोजन कराया, उसके युगल ज्ञान में इतनी नहीं, कभी कभी आती थी। उसने सोचा हमारा ब्रह्मा भोजन हो रहा है, वो भी आई। उसने सोचा हमारा ब्रह्मा भोजन हो रहा है, नेचुरल वो तो सोचेगी ना, उसके पति ने कराया है, मैं भी सबको भोजन खिलाऊं बांटूं सर्व करूं। उसने भी कुछ उठाया और भोजन बांटना शुरू किया। किसी ने देखा कि ये माता जो कभी कभी आती है ये भी भोजन खिला रही है, वो उसके पास गए और कहा देखो थोड़ा सा स्वीटली नहीं टाइटली बोला, देखो क्या बोला, आप हैरान होंगे, तुम भोजन नहीं खिलाओ तुम पतित हो। और भी कुछ आगे बोल दिया। अब बेचारी बहने होती हैं, रोने लगी, मैं अपने पति को तो कुछ कह नहीं सकती थी, बैठ गई चुपचाप, लेकिन घर जाके बहुत उदास हो गई। शायद सबको लगे कि बात तो ठीक कही ना, वो पतित है तो वो भोजन क्यों खिलाए, वो वैसे तो पतित नहीं, उसका पति भी ज्ञान में है और वो भी कम से कम पवित्रता को तो धारण किए हुए है, बाकी बाहर भोजन खाती है, संबंधों में जाती है, लौकिक में रहती है। तो देखिए अब इस घटना का एनालिसिस करें, विश्लेषण करें इसका, कितने अच्छे शब्दों में कहा जा सकता था कि अरे बहन तुम तो हमारी मेहमान हो ना, आओ तुम भोजन खाओ हम खिलाएंगे ना, अब क्यों ये मेहनत कर रही हो। बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करके उसका दिल भी जीता जा सकता था, लेकिन एक व्यवहार ने उस परिवार के लिए समस्याएं पैदा कर दी। अब जिसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ वो अपने पति से बदला तो लेगी ना, कहां जाते हो तुम, आगे तो आप जानते हैं। गलत बोल समस्याओं को जन्म देते हैं, इसलिए परिवारों में भी, सेवा के संगठनों में भी हम ऐसे बोल बोलेंगे जिससे किसी के जीवन में विघ्न पैदा न हो, किसी की स्थिति न बिगड़ जाए, किसी की खुशी न चली जाए। बाबा के पास सभी खुश होने आए हैं, बाबा के पास सभी दुखों से मुक्त होने आए हैं, शांति के लिए आए हैं। सब जानते हैं संसार में कितनी टेंशन है, उसको हल्का करने के लिए आत्माएं यहाँ आती हैं। हम उन्हें सहयोग करेंगे, उनकी गलती हो सकती है, वो कुछ गलत काम कर सकते हैं, उनका व्यवहार भी गलत हो सकता है, वो टेंशन में भी रह सकते हैं, लेकिन हमें उनको रिलैक्स करना होगा। इससे बाबा जो हमें एक बहुत अच्छी बात कह आए, चेहरे और चलन से सेवा करो, ये प्रैक्टिकल में हो जाएगा। पसंद है ना सबको? बोल हमारे बहुत सुखदाई, सबके चित्त को शीतल करने वाले, जो आज बाबा ने कहा ना, कितनी सुंदर बात थी, ज्ञान के छींटे डालकर तुम सभी को शीतल करते हो। तो ज्ञान के छींटे भी मुख से डाले जाते हैं, मुख से ऐसे बोल हम बोले चित्त शीतल हो जाए। मुझे एक हंसी की बात और याद आ रही, किसी ने मुझे आज ही फोन किया, कहा मैं नौकरी करती हूँ, हमारे ऑफिसर ने मुझे 3 बार चैलेंज किया था कि तुम भाई नौकरी से रिजाइन करो, बार बार तुम्हारे से गलती हो रही है। 2 दिन पहले उसने फाइनली मुझे कहा तुम नहीं आना कल से, तुम्हारे चेहरे से ही टेंशन दिखाई दे रही है, तुम बहुत टेंशन में हो, कुछ का कुछ लिखती हो, फाइल में कुछ भरना है तुम कुछ भरती हो, इसलिए हमारा काम बिगड़ रहा, तुम नहीं आना। वो बेचारी आ गई, मुझे फोन किया, बाबा तो कहता है चेहरे से सेवा होनी चाहिए, क्या मेरे चेहरे से टेंशन दिखती है? मैंने कहा भाई मुझे तो तुम्हारा चेहरा दिख नहीं रहा फोन पर भी, वो तो तुम जानो तुम्हारे चेहरे से टेंशन दिखती है या क्या दिखता है। एक बहुत सुंदर बात ये है, ये तो मैंने हंसी की बात आपको की, मैंने तो उसको रिलैक्स किया, कोई बात नहीं अपनी स्थिति को अच्छा बना लो, ये सब ठीक हो जाएगा। जैसे अहंकार के लिए कहा गया है कि मनुष्य ये तो जानता है कि अहंकार बहुत बुरा है, लेकिन इस संसार में बहुत कम लोग, ब्राह्मण संसार में भी बहुत कम लोग ये नहीं जानते कि मुझ में अहंकार कहाँ है। अगर मनुष्य अपनी परेशानियों का असली कारण अपने अंदर ढूंढ ले, अपनी समस्याओं का बीज अपने अंदर ढूंढ ले, तो अनेक समस्याओं से वो मुक्त हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है, मनुष्य के मन में क्वेश्चंस उठते हैं, कंप्लेंट्स होती हैं। हमें अपना जीवन ऐसा शीतल करना चाहिए, नो क्वेश्चन नो कंप्लेंट। इसके लिए हमें ड्रामा का बहुत गुह्य ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात सुना दूं, बहुत सुंदर है दूसरी बात। हमारे एक बहुत अच्छे भाई ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, अभी की बात है, सामने एक माता बैठी थी, सफेद कपड़े और बैज देखकर उसने पूछ लिया आप ब्रह्मा कुमारियों में जाते हो क्या? कहा हाँ बहन जी। ये भाई बहुत अच्छा सॉफ्ट स्वीट है। कहा मैं तो ब्रह्मा कुमारियों में कभी नहीं जाऊंगी। कहा क्यों, क्या हो गया? कि मेरी सास रोज सवेरे 2 बजे उठती है आपका ध्यान करने के लिए, वो आप क्या सुनाते हो वहाँ रोज सुनने के लिए जाती है सवेरे सवेरे, मुझे अपने किचन में आने भी नहीं देती है और मुझे बुरा बुरा बोलती है। कहा सारा परिवार उससे दुखी हो रहा है, क्या सिखाते हो आप? मैं तो ब्रह्मा कुमारियों में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैंने हंसी में कहा तुम उसे कहना चाहिए था कि मैं अपनी सास के पास नहीं जाऊंगी, ब्रह्मा कुमारियां तो बहुत अच्छी है। तो इसने बताया उसको कि ऐसा नहीं है बहन जी, वहां तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। वो बातें सुन के खुश हो गई और आखिर में उसने कहा मैं अब जरूर जाऊंगी और मैं ये इसलिए भी जाऊंगी कि इतना अच्छा ज्ञान सुनकर मेरी सास क्यों नहीं बदली है। बात उसकी सास की बहुत खराब खराब है, उसने सुना दी सारी, बेचारी के अंदर भरा हुआ था सारा निकाल दिया कि अपने लड़के की मैं बता देता हूँ, माताओं को ये काम नहीं करना चाहिए, किसी को बुरा न लगे मैं इशारे में कह रहा हूँ। उसने कहा कि मेरे पति की वो दूसरी शादी करा रही है क्योंकि मैं कम दहेज लाई थी, वहां से उसको ज्यादा दहेज मिल रहा है। तो देखिए बाबा का नाम तो इससे रोशन नहीं होगा ना, दहेज किसके काम आएगा। मैं तो हमेशा सबको कहता हूँ अपना धन ही मनुष्य को सुख दे सकता है, पराए धन से सुखी रहने की कामना मृग तृष्णा के समान है। धन तो बहुत आ जाए, दहेज तो बहुत आ जाए, लेकिन लड़की लड़ाकू आ जाए तो माताएं बताए पसंद होगी? फिर माताएं कह देती अपना दहेज वापस ले जाओ, तुम स्वीट बनो, सॉफ्ट बनो, सुखदाई बनो। तो हम सभी अपने जीवन को महानताओं की ओर ले चले। आज की मुरली से हम सीखें, हमें स्वयं भी शीतल रहना है और अपने व्यवहार से दूसरों को भी शीतल करना है। संसार में तन की समस्याएं भी बहुत बढ़ती जा रही हैं। बढ़ रही हैं या नहीं? एक डॉक्टर के पास कलम थे, कहा कि कुछ ही समय में, आज मैंने अखबार में भी यही बात पढ़ी, कुछ ही समय में ऐसा हो जाएगा कि संसार में ढूंढने से भी कोई निरोगी व्यक्ति नहीं मिलेगा। मैंने पूछा क्यों? कहा देखो टेंशन बढ़ रही है, हवा में भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पानी भी दूषित हो गया है, जो अन्न सब्जी फल हम खा रहे हैं उसमें ऐसी रासायनिक चीजें डाली जा रही हैं, ये सब चीजों के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है, किसी को हार्ट अटैक हो रहे हैं और बहुत सारे तरह के बुखार बढ़ रहे हैं। तन की बीमारियां भी मनुष्य के लिए बड़ी समस्या का रूप लेती जा रही है। क्या करेंगे हम बोलो? तन की बीमारियों के प्रभाव से बचने के लिए हमारा अंतिम समय हॉस्पिटल में न बीते, हम कैसे शरीर छोड़े? इच्छा मृत्यु, बाबा ने कहा है, स्मृति स्वरूप रहते हुए स्वइच्छा से बाबा से बात करते हुए हम देह का त्याग करें। इसके लिए बहुत आवश्यक है एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जिस पर हम सबको बहुत ध्यान देना है, जो हमारे लिए छोटी सी चीज है, अशरीरी होने का अभ्यास करना, देह से न्यारापन। जितने जितने हम इस देह प्रकृति से न्यारे होते जाएंगे, इसकी पीड़ा हमें पीड़ित नहीं करेगी। ये सबको अनुभव करके देखना है। शरीरी का अभ्यास करने वालों को दर्द नहीं होता, इंजेक्शन भी लगाएंगे पीड़ा नहीं होगी। और भी कोई बीमारी आ गई जो बहुत दर्द देती है, दर्द की फीलिंग नहीं होगी। इसलिए अपनी दिनचर्या में अशरीरीपन के अभ्यास को विशेष महत्व देना ही है। दूसरी चीज बहुत गहरा संबंध है, सभी प्रकृति को रोज सकास दिया करें, प्रकृति को वाइब्रेशंस, ये नियम बना दें। अपने योग अभ्यास में हमें प्रतिदिन प्रकृति को भी 5-7 मिनट वाइब्रेशंस देने हैं। बोलो हो सकता है ये भाई लोग? इससे ये प्रकृति से बना हुआ शरीर हमें सदा सहयोग करेगा। और इम्पोर्टेंट बात ये भी है, पानी और भोजन को पवित्र वाइब्रेशंस देकर ही ग्रहण करें। पानी भी दूषित हो गया है, एक बड़ी बड़ी समस्याएं और भी संसार में आ रही हैं आजकल। किसकी? बहुतों को इसका पता नहीं है, पर पता होना चाहिए, भटकती हुई आत्माओं की। मेरे पास आज ही एक भाई आया, 2 दिन से उसका हाल खराब हो गया। क्या हुआ? कहता मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी स्थिति बहुत सुंदर थी, मेरा योग बहुत अच्छा था, मेरे को खुशी रहती, नशा रहता, 2 दिन हुए पता नहीं क्या हो गया। चेहरे से उसके दिख रहा था, सलवटे आ गई थी चेहरे पर, सिकुड़न पड़ गई थी, उदासीनता स्पर्श झलक रही थी। कल मेरे पास आया, मैंने इसको एक छोटा सा अभ्यास कराया। देखिए मैं क्लास में ही बता देता हूँ, आप सबको इससे बहुत फायदा होगा, किसी के साथ भी ऐसा होने लगे ये छोटा सा अभ्यास प्रारंभ करें। मैंने कहा अभी जाकर अपने कमरे में शांत बैठकर स्वीकार करते हुए मैं एक महान आत्मा हूं 108 बार लिखो। उसने लिखा, दोपहर से पहले का समय था, मैंने कहा था रात को भी लिख लेना एक बार, रात को भी लिखा। आज सवेरे मेरे पास आया, मैंने कहा कैसा लग रहा है, कहा आधा तो ठीक हो गया। एक दो मैंने और उसको अभ्यास कराए, अभी शाम को मिला, कहा मैं बहुत फ्रेश हो गया हूं, थोड़ा सा बचा है। तो देखिए ये सब भटकती आत्माओं के इफेक्ट, इनसे भी हमें बचना है, ये भी जीवन में बहुत बड़े बड़े विघ्न पैदा करते हैं। जहां जहां सेवाओं में इनका प्रभाव रहा है, सेवाओं को नष्ट कर दिया है। मनुष्य के अपने जीवन की उमंग उत्साह को इन चीजों ने समाप्त कर दिया है। हमें अपने अंदर बहुत अच्छा नशा होना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात इस संबंध में आप सबको कहूंगा, इन सब चीजों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। एक बहुत पावरफुल संकल्प आप रख लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मुझ पर इन सब का असर हो नहीं सकता। अपने मनोबल को बढ़ा देखो, ये तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत, ये कमजोर चीजें हैं। अगर हम अपने मनोबल को बढ़ा दें, हम अपने संकल्पों को बहुत स्ट्रांग कर दें, तो इनका कोई इफेक्ट हम पर नहीं होता। ऐसे मेरे पास बहुतों के अनुभव हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इन सब का इफेक्ट मुझ पर हो नहीं सकता। बिल्कुल अपने अंदर पूरे आत्मविश्वास के साथ इस संकल्प को भर लें, आप देखेंगे पूरे सुरक्षित रहेंगे। क्यों, क्या होता है, जितना हम मास्टर सर्वशक्तिवान का ज्यादा अभ्यास करते हैं, हमारा प्रभा मंडल दूर दूर तक फैल जाता है। समझते हैं ना, प्रभा मंडल इंग्लिश में ओरा कहते हैं। हमसे जो किरणें निकलती हैं वो दूर दूर तक फैलती हैं, और ये जो अशरीरी आत्माएं हैं, भटकती हुई आत्माएं, हमारा प्रभा मंडल उनको दिखाई देता है, वो दूर भाग जाती हैं, क्योंकि इसमें बहुत पावर होती है। जो डरते हैं उन पर इन चीजों का ज्यादा अटैक होता है, इसलिए अपने को पूरी तरह से निर्भय बना देना है। देह की बीमारियों की बात हम कर रहे थे, बीमारियां तो आएंगी जरूर, ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं जिनको इन शारीरिक बीमारियों से युद्ध न करना पड़े। जो मैंने बताई आपको, पानी ही दूषित हो गया है, अन्न दूषित हो गया है, मन भी दूषित होता जा रहा है। हमें अपने विचारों की शुद्धि को बढ़ाते चलना है। एक ऐसा दीदीपन की मैंने बात कही। दूसरा, अगर अचानक भी कोई बीमारी जीवन को आ घेरे, समस्या वहां होती है, कई केस ऐसे आते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक ऐसी भयानक बीमारी आई, कुछ समझ में ही नहीं, आप करें क्या। कैंसर एक ऐसा रोग हो गया है, कईयों के केस अभी हो गए, बस मृत्यु से एक मास पहले पता चला कैंसर अंतिम स्थिति में है। एक केस पंजाब का अभी पता चला, बोन कैंसर बहुत भयानक स्थिति में है, हड्डियों को गला रहा है, केवल कमजोर नहीं कर रहा, हड्डियों को चूर चूर कर रहा है, गला रहा है। बेचारे की जीने की सभी उम्मीदें खत्म हो गई, पेन होने लगा। ऐसी अचानक भी बीमारियां आ जाएं तो हमें अपने धैर्य को नहीं खोना है, तब हमें यही सोचना है अब इस परिस्थिति में हम अच्छी से अच्छी स्थिति में कैसे रहें। परिस्थिति तो आ गई, कुछ ऐसी परिस्थिति मनुष्य के पास आती हैं जिनको अवॉइड किया ही नहीं जा सकता, जो हैं और रहेंगी और अचानक आती है। मनुष्य आश्चर्यचकित हो जाता है, कभी बाबा को कहने लगता है ये सब क्या हो गया, अपने मनोबल को गिरा लेता है, अब क्या करें। लेकिन हमें हर चीज के लिए अपने को तैयार करना ही होता है। जो कुछ भी जीवन में ऐसी बात आ गई उसे स्वीकार करके हमें अच्छे से अच्छा ये सोचना है, अब हम अपनी स्थिति को अच्छा कैसे बनाएं। तो अगर मृत्यु भी आएगी तो सहज भाव से आएगी, ये ध्यान रखना है। तो इससे हम शरीर की जो समस्याएं जीवन में आ रही हैं इनको भी पार कर सकेंगे। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि भयानक बीमारी आ गई, उपचार के लिए धन भी नहीं है, ये कड़ी परीक्षा हो जाती है मनुष्य की। ऐसे में बाबा में विश्वास रखना, बाबा सब कुछ ठीक करेगा, कोई मार्ग निकाल देगा, ऐसे संकल्प रखते हुए अपनी स्थिति को मधुर बनाए रखना चाहिए। सबसे बड़ी समस्याएं जीवन में आती हैं लोगों के अपने स्वभाव संस्कारों के कारण। सबसे ज्यादा अपने लिए समस्या मनुष्य स्वयं बनता है। बहुत लोग बताते हैं हमारा चित्त चैन नहीं पा रहा है, हमारे मन को शांति नहीं मिल रही है, पता नहीं अचानक क्या हो गया है, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, बहुत से जीवन जी रहे थे, चित्त को पता नहीं क्या हो गया, भटकने लगा है। ऐसी समस्याओं से भी मुक्त होने के लिए हमें एक ही चीज पक्की करनी है, इस पर सभी बहुत ध्यान देंगे कि हमारा अमृत वेला और मुरली मिस न हो। और बात केवल मिस होने की नहीं है, हम इन्हें एंजॉय करें, हम रोज सवेरे उठकर अपने को चार्ज कर दें, अपने को आनंद से भर दें, ईश्वरीय सुखों का अनुभव करें, परमात्म मिलन की अनुभूति करें और मुरली के द्वारा हमारा मनोबल बढ़ जाए, मुरली के द्वारा रोज हमारे विचार बदल जाएं, इस पर हमें बहुत ध्यान देना है। बहुत लोगों के पास क्या होता है, समस्याएं आई और उसका सबसे पहला इफेक्ट होगा अमृत वेला मिस, सुस्ती आ जाएगी, मन इतना उदास होगा मुरली सुनकर क्या करेंगे। तो बाबा ने बहुत पहले एक बहुत सुंदर समाधान सुझाया है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। बाबा ने कहा बच्चों के पास जब कोई भी समस्या आती है तो बाप अमृत वेले समस्या का हल टच करते हैं, लेकिन अगर बच्चों की बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होती तो बच्चे उसे कैच नहीं कर पाते। फिर बाबा ने और भी कहा देखो बाबा हमारा कैसा है, दिन में अगले दिन सवेरे फिर टच करते हैं, बच्चा इस समस्या से बाहर आ जाए। लेकिन कई बच्चे उठते ही नहीं, मुरली में उत्तर देते हैं लेकिन जाते ही नहीं, तो समस्याओं से घिर जाते हैं। इसलिए बाबा ने उसी मुरली में बोला था अमृत वेले को ठीक कर लो, समस्याएं ठीक हो जाएंगी। बहुत सुंदर ये बात है। तो हमें अपने संस्कारों पर, अपने स्वभाव पर भी बहुत ध्यान देना है। अगर हमारे अंदर परचिंतन करने की बहुत आदत होगी, अगर हमारे अंदर व्यर्थ में रहने का बहुत संस्कार होगा, अगर हमारे अंदर कटु वचन बोलने का संस्कार होगा, तो हम अपने लिए और दूसरों के लिए समस्याओं का निर्माण करेंगे। तो बहुत एक सुंदर सिद्धांत सभी को याद रखना है, जो कुछ हम दूसरों को देते हैं वो कई गुना होकर हमारे पास आ जाता है। हम दूसरों के मार्ग में समस्याएं पैदा करेंगे तो हमारा मार्ग भी समस्याओं से भरा हुआ होगा। हम दूसरों के लिए दुखदायी वचन बोलेंगे तो हमें दुखदायी कटु वचन सुनने ही पड़ेंगे। एक तो दुनिया में ये कहते हैं लोग कि सदा याद रखो, दुनिया वाले कहते हैं जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हम करें भी। एक व्यक्ति गुस्सा करता है, वो दूसरों से गलत वचन बोलता है, लेकिन जब दूसरा उससे गलत वचन बोलता है तो उसे सहन नहीं होता। मुझे याद है हमारे यहाँ बहुत पहले एक बूढ़ी माता रहती थी, गुस्सा बहुत आता था, कुछ भी बोलती थी। एक दिन कोई उसको बोल रहा था जरा टाइट, उसने कहा, वो डर गई, उसने कहा देखो भाई मेरे से प्यार से बात करो। सब इतने हंसे कि जिसने जीवन में कभी प्यार से बात नहीं की आज वो इन्हें कह रही है मेरे से प्यार से बात करो। लेकिन मैं दूसरी बात जो आपको सुना रहा हूं वो ये है, जो व्यवहार हम दूसरों से करते हैं, व्यवहार और कर्म, वही हमसे भी किया जाएगा, ये हमें भूलना नहीं है। कोई भी, मान लो बिजनेस में कोई किसी को धोखा दे रहा है तो उसे समझ लेना चाहिए उसके साथ भी धोखा होगा। तो हम अपने जीवन को निर्विघ्न बनाने के लिए अपने विचारों को निर्विघ्न बनाएं, अपने बोल को निर्विघ्न बनाएं, अपनी भावनाओं को शुद्ध करें। हमें थोड़ा कष्ट भी हो, हमें सहन भी करना पड़े, हम उसके लिए तैयार रहें, पर हम किसी की खुशी छीने नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जो मनुष्य खुशी बांटता है उसका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाता है। इंग्लिश में किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही, बस ये लास्ट बात मैं कहूंगा आपको, हिंदी में बता देता हूं। इंग्लिश में तो है, लोग सोचते हैं सक्सेस इज द की टू हैप्पीनेस, सफलता खुशी की चाबी है, सफलता मिलेगी तो खुशी होगी। लेकिन उसने कहा ये नहीं, सत्य ये है, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस, खुशी सफलता की चाबी है। हम खुश रहेंगे सफलता परछाई की तरह हमारे आगे पीछे रहेगी। तो हम बाबा की श्रेष्ठ कामना को पूर्ण करेंगे, बच्चे सदा खुश रहो। बातें इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी खुशी इम्पोर्टेंट है। बातें बहुत छोटी हैं, हमारी स्थिति बहुत बड़ी चीज है। छोटी बातों के कारण हम अपनी बड़ी स्थिति को गंवाएंगे नहीं तो परिस्थितियां समाप्त। ओम शांति।